हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज हमें बहुत खुशी है, हमारे बीच में बहुत ही विशेष प्रवक्ता हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु। तो एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद श्री श्री राधिका रमन जी की कृपा से हमें उनका संग प्राप्त हो रहा है। एक संक्षिप्त परिचय, प्रभु जी ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया ITBHU से, BTech वहाँ पर। ITBHU से ने स्कॉन को बहुत सारे लीडर्स दिए हैं, वैसे कृष्णानंद वो एक है। उसके बाद प्रभु जी ने बाहर US जाके MS कंप्लीट किया, वहाँ पर वो स्कॉन के संपर्क में आए। और आई थिंक 1986-87 से प्रभु जी निरंतर स्कॉन में सेवा कर रहे हैं। और लगभग पिछले 20 वर्ष से प्रभु जी पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और विशेषकर अपने जप के द्वारा अनेकों भक्तों को प्रेरित करते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में। और कुरुक्षेत्र में भी प्रभु जी ने वहाँ पर प्रचार शुरू किया। प्रभु जी अक्सर बताते हैं कि जब वहाँ पर प्रचार शुरू हुआ तो आश्रम में 6 लोग थे, प्रभु जी, हिजोलना सुखदेव महाराज, राधा कृष्ण और गौरनिताय। तो उस समय से प्रभु जी ने वहाँ पर प्रचार शुरू किया, हमारा परम सौभाग्य है। और खासकर आज के इस विशेष उत्सव पर आपको शायद पता होगा कि 2017 श्री रामनाचार्य जी का 1000th अपीयरेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है पूरे विश्व भर में। तो और आज से ही रामकथा का भी प्रारंभ हो रहा है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो मेरा ये परम सौभाग्य है कि काफी समय के बाद राधा राधिका रमन के पवित्र भक्तों का संग मुझे मिल रहा है। वास्तव में जैसे प्रभु जी ने बताया कि ये भगवान की कृपा से ही संभव है कि हमें भगवान के भक्तों की सेवा मिलती है, चाहे हमारी सेवा हो प्रवचन देना या प्रसाद सर्व करना या प्रवचन सुनना या ज्यादा इजी है प्रसाद ग्रहण करना। एब्सोल्यूट लेवल पर कोई अंतर नहीं है, श्रोता वक्ता दोनों को लाभ प्राप्त होता है। भागवत में बताया गया ये जो कृष्ण कथा है या भगवान के भक्तों की कथा है या राम कथा है, ये गंगा के समान है। गंगा उच्च लोक, मध्य लोक और निम्न लोक तीनों को पावन करती है। ऐसी भगवान की कथा जो है बोलने वाले को सुनने वाले को और सारी मानवता को लाभकारी है। तो मैं यहाँ के सब भक्तों को धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली कदम्ब विहार प्रभु जी को, उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया। इट्स एक्चुअली ग्रेट फॉर्च्यून। स्पेशली मुझे यहाँ के एडिटिस राधा राधिका रमन बहुत प्रिय लगते हैं। व्हेनेवर आई सी देम आई फील दैट उनको कैप्चर करके हृदय में ले जाना चाहिए। नाउडेज इन मोबाइल में लोग कैप्चर करते हैं, ऐसा एक मोबाइल होना चाहिए जो हृदय में कैप्चर कर, ठीक है। जिसके अगर हमारे हृदय में हम राधिका रमन को रखें तो हम वृंदावन में हैं। वृंदावन वही स्थान है जहाँ पर राधा और कृष्ण केंद्र में है। तो अगर आप दिल्ली में हैं या बम्बई में हैं, पंजाबी बाग में हैं या द्वारका में हैं, अगर आप राधा और कृष्ण को याद कर रहे हैं तो आप श्रीधाम वृंदावन में हैं। वृंदावन इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी बोलते हैं वृंदावन ये चेतना का सवाल है। आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है, मैं उनके बारे में बोलूँगा। और एक्चुअली पहले मेरा विचार था राम कथा शुरू करने का, प्रभु जी ने मुझे आदेश दिया था, लेकिन अभी अभी रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा सा एंड में भगवान राम के बारे में। श्रीपाद रामानुजाचार्य ये उन वैष्णवों में से एक हैं जो भगवान की लीला में या भगवान के मिशन को धरती पे स्थापित करने के लिए आते हैं। भगवान से आने वाले 4 अधिकृत संप्रदाय हैं, ऑथराइज संप्रदाय। एक है जो ब्रह्मा जी से आता है, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, मध्वाचार्य, यह है ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा है जो लक्ष्मी देवी से आता है जिसको श्री संप्रदाय कहते हैं, उसी में श्रीपाद रामानुजाचार्य प्रकट होते हैं। तीसरा है जो 4 कुमारों से आता है जिसमें कि निम्बार्काचार्य प्रकट हुए, और चौथा है जो रुद्र संप्रदाय है शंकर जी से आता है जिसमें विष्णु स्वामी प्रकट हुए। तो रामानुजाचार्य श्री वैष्णव जो रामानुचार्य के संप्रदाय के अनुयायी हैं उनको श्री वैष्णव कहा जाता है। तो श्री वैष्णव में इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम रामनवमी मना रहे हैं, श्री संप्रदाय में भगवान राम की वंदना का ज़्यादा उल्लेख आता है। हालांकि वो स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, भगवान नारायण परम श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज़्यादा आराधना भगवान श्री रामचंद्र जी की जाती है। और श्री संप्रदाय के भक्तों का ये भी मत है कि राम अनुज, अनुज मतलब छोटे भाई को कहा जाता है, रामानुज का मतलब है भगवान राम के छोटे भाई यानी लक्ष्मण। वैसे मानते हैं कि लक्ष्मण जी के अवतार हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, आज से करीब 530 वर्ष के करीब यहाँ आए थे, 530 वर्ष पहले, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये चारों संप्रदाय से दो दो महत्वपूर्ण शिक्षाओं को ग्रहण किया। जैसे कि आप जानते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि सबसे पहले वैदिक धर्म का तो प्रचार चल ही रहा था, लेकिन ऐसा देखा गया कि कई व्यक्ति जो है वेद धर्म का दुरुपयोग कर रहे थे, कि वेदों के कुछ भाग हैं जहाँ पर कि जानवरों का बलि चढ़ाने का वर्णन आता है, और वो इसलिए किया जाता था क्योंकि वो जानवर को नया शरीर मिलता और मंत्रों की परीक्षा होती, यानी जब कोई जानवर को बलि चढ़ाया जाता है तो तुरंत नया शरीर मिलता और पता चलता है कि ये मंत्र बोनाफाइड है। तो आजकल तो ये संभव ही नहीं है, बलि चढ़ जाएगी और बलि चढ़ने वाले का भी बलि चढ़ जाएगी क्योंकि वह अपराध है। आजकल इतने पावरफुल मंत्र बोलने वाले हैं ही नहीं, एक्सेप्ट हरे कृष्ण मंत्र, कलयुग में ज़्यादा मंत्रों की शक्ति नहीं है। तो इसलिए फिर जब सब जगह पे जीव हिंसा होने लगी तो उसको बंद करने के लिए भगवान बुद्ध देव का अवतार आया। हालांकि बुद्ध देव भगवान के अवतार हैं, उन्होंने फिलॉसफी ऐसी बताई जो नास्तिकवाद से मिलती जुलती है, वो वेदों को नहीं स्वीकार करते, निंदसी वेद अह श्रुति जातम, और वो ऐसा मानते हैं कि बस बुद्ध ही परम श्रेष्ठ है, अहिंसा ही परम धर्म है। तो जैसे मान लो कोई लॉ बुक है और देखा जाता है कि समाज में कोई लॉ बुक का कोई कॉन्स्टिट्यूशन के नियम है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है समाज के द्वारा, सरकार क्या करते हैं कि उस नियम को रद्द कर दिया जाता है जिससे कि लोग दुरुपयोग नहीं करें। तो भगवान ने देखा जबकि वैदिक धर्मों का दुरुपयोग हो रहा है तो उन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया, होल से पूरे रिजेक्ट कर दिया, निंदसी वेद। और फिर उसके बाद भगवान बुद्ध देव ने अपने ही सिद्धांतों को स्थापित किया जो मूलतः सत्वगुण पे लेने के लिए अहिंसा का पालन करना है। इनडायरेक्टली उनको भगवान की सेवा में लगाया क्योंकि बोले भगवान की पूजा मत करो, लेकिन बुद्ध भी भगवान के अवतार हैं। तो बुद्धिज्म सब जगह पे फैल गया, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, भारतवर्ष में। उसके बाद शंकराचार्य जी आए फिर से वैदिक धर्मों की अथॉरिटी को स्थापित करने के। शंकराचार्य जी भगवान शिव जी के ही एक्सपांशन हैं और उन्होंने प्रचार किया कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि फिर से वेदों में श्रद्धा जागृत करने के लिए कुछ उनको लुक्रेटिव ऑफर देना था लोगों को। अगर डायरेक्टली बोले हम कृष्ण के दासों के दासों के दास हैं, सब इंद्र तृप्ति को त्याग देने सर्वधर्मान परित्यज्य, तो लोग बोलेंगे हम आपको ही त्याग देते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य ने एक ऐसा ऑफर दिया कि आप स्वयं ब्रह्म हो या आप परम ब्रह्म बन सकते हो, ब्रह्म ब्रह्म में लीन हो जाता है, ये उनका भ्रम है मायावादियों का। तो उन्होंने शंकराचार्य ने ऐसे दिया जिससे लोग किसी तरीके से वैदिक धर्म में फिर से निष्ठा स्थापित करें। इस सुनने में और मन को बहुत अच्छा लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। दुनिया में हम आए इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहता है। किसी स्टूडेंट से पूछो आपकी क्या इच्छा है, बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहता है। किसी सिंगर से पूछो क्या बनना चाहते हैं, बेस्ट सिंगर। कोई सुंदर नहीं भी हो आप उसको बोलो कितने सुंदर लग रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, नेचुरल है। तो ये उसके कारण जब परम स्तुति ये है कि मैं भगवान बन सकता हूँ, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। इसीलिए शंकराचार्य की फिलॉसफी सब जगह पर फैलने लगी। इसके बाद फिर रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य आए, लोगों को कैप्चर करके। बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल है, यू नो जियो सिम का, लोगों को कैप्चर कर देना और बाद में चार्जेस लेना। मार्च 31 तक, अभी आज 1 अप्रैल हो गया। बाद में फिर रामानुजाचार्य आए। अब रामानुजाचार्य ने फिलोसफी दी हो विशिष्ट अद्वैत क्वालिफाइड वननेस, लेकिन उसके बाद फिर मध्वाचार्य आए। मध्वाचार्य और ज्यादा स्ट्रांग थे द्वैतवाद पे, कहते हैं कि शुद्ध द्वैत थे, दो उंगली उनके कि जीव और भगवान दोनों अलग हैं। रामानुजाचार्य का था विशिष्ट अद्वैत, इनका था शुद्ध अद्वैत, ये दोनों जीव और भगवान दोनों अलग हैं, जीव और जीव अलग हैं, जीव और प्रकृति अलग हैं, प्रकृति और भगवान अलग हैं, तो डिफरेंस पे फोकस किया। शंकराचार्य पूरा वननेस पे फोकस किया। और फिर लास्ट में चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने सिखाया अचिंत्य भेद अभेद, ये जीव और भगवान एक भी है और अलग भी है, तो ये मतलब परफेक्ट यूनियन है। सारे जो दर्शन शास्त्रों का कंक्लूजन श्रीमन महाप्रभु स्वयं सिखा रहे। महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से दो महत्वपूर्ण शिक्षाओं को ग्रहण किया और अपने अपनी शिक्षाओं में उसका उल्लेख किया है। कौन सी दो चीजें हैं? एक है वैष्णवों की सेवा। ये वैष्णव सेवा जो है, ये जो सिद्धांत श्रील प्रभुपाद ने भी हमें सिखाया है, ये श्री संप्रदाय में बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में सिखाया गया। इनफैक्ट अभी भी मैं दक्षिण भारत में जब जाता हूँ या उत्तर भारत में, देखोगे श्री संप्रदाय के अनेक मंदिर हैं और कोई व्यक्ति किसी भी समय आए उनको स्वागत, उनको प्रसाद देना, ये हम इस्कॉन में भी ऐसा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। मुझे याद आया कल प्रभुपाद जी का मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी अभी मायापुर में थे और एक बड़ा उत्सव हुआ था, उस उत्सव के बाद सब भक्त विश्राम कर रहे थे। जनरली उत्सव का मतलब लास्ट पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होता है, महाप्रसादे गोविंद, ये प्रसाद के बाद सब विश्राम कर रहे थे अच्छी फीस्ट के बाद। अब प्रभुपाद ने अपने कमरे से देखा तो खिड़की से क्या देखा उन्होंने कि जहाँ पे प्रसाद हॉल के बाहर जहाँ पत्तल फेंके जाते हैं वहाँ पर कोई दो बहुत ही गरीब बच्चे झगड़ रहे थे झूठे पत्तल के लिए। तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद जी ने सब अपने लीडिंग जीबीसी मेंबर्स सब उस समय जो मंदिर के नेता सबको बुलाया, बोले कि मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भूखा नहीं रहे। तभी से इस्कॉन में सिस्टम शुरू हुआ प्रसाद वितरण का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कंपैशन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ये नहीं सोच रहे थे कि बच्चे को प्रसाद दे के क्या फ़ायदा, ये तो कलश स्पॉन्सर नहीं करने वाले हैं, ये तो कोई यू नो फुल टाइम ज्वाइन नहीं होने वाले। कई बार हमारी सेवा में ऐसा भाव आता है कि मैं इसको सेवा करूँगा तो मेरे लिए क्या करेंगे बदले में, या मंदिर के लिए क्या करें। लेकिन वास्तविक सेवा का मतलब है बिना किसी अपेक्षा के, बस इस जीव के हृदय में भगवान है और मैं भगवान के सेवकों का सेवक हूँ। आई एम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, एवरी लिविंग बींग इज सर्वेंट ऑफ कृष्ण एंड आई एम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, दैट मीन्स आई एम सर्वेंट ऑफ एवरी लिविंग बींग, हर एक जीव का मैं दास 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 दासन दास। ये एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और उसी का एक्सटेंशन है दास 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 दास। मेटीरियल फिलॉसफी है बॉस बॉस आनु बॉस, हर एक व्यक्ति स्वामी बनना चाहते, हर एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते, हर एक व्यक्ति कंट्रोलर बनना चाहते। वैष्णव मतलब दास 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 दास। और हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन के कुछ घटनाओं को देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपने उदाहरण से सबके कल्याण के लिए किया। तो दूसरा सिद्धांत जो महाप्रभु ने रामानुज संप्रदाय से लिया वो है भक्ति, भक्ति बिना ज्ञान और कर्म के, प्योर डिवोशन फ्री फ्रॉम कर्म एंड ज्ञान। हम जब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में पढ़ते हैं ये श्लोक, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म, हालांकि ये भी कभी कभी आध्यात्मिक प्रगति में लाभकारी होते हैं, लेकिन अंततः शुद्ध भक्ति का मतलब है ज्ञान और कर्म से भी मुक्त, सिर्फ शुद्ध भक्ति जिसमें एक ही विचार है कि श्री कृष्ण भगवान किससे प्रसन्न होंगे, हाउ कैन आई प्लीज कृष्ण, हाउ कैन आई सर्व कृष्ण, मैं कैसे कृष्ण का सेवा कर सकता हूँ। श्रीपाद रामानुजाचार्य का अवतार आज के दिन जैसे प्रभु जी ने बताया 1000 वर्ष पूर्व हुआ, 2000 आज 2017 है, 1017 में प्रकट हुए और करीब 120 वर्ष तक वो इस धरती पर उन्होंने अपने प्रचार के कार्य को किया। जो चेन्नई के पास में एक जगह है श्री पेरुम्बुदूर, वहाँ पर वे प्रकट हुए और उनके पिताजी का नाम असुरी केशव आचार्य था, माता का नाम कांतिमती, के माता की बहन का नाम दीप्तिमती था। रामानुजाचार्य के मदर के माँ के बहन यानी मौसी के बेटे का नाम गोविंद था, जो उनके कजन ब्रदर हो गए। तो रामानुजाचार्य के अंदर शुरू से ही बहुत विशेष लक्षण दिखाई पड़ रहे थे जो महापुरुष के होते हैं। और मैं बहुत शॉर्ट में सब जितना मुझे याद आता है उन कथाओं का उल्लेख करूंगा, क्योंकि समय कम है और रामानुजाचार्य की कथाएं तो कई घंटों तक बोले जा सकते हैं। रामानुजाचार्य संप्रदाय में महान आलवर हुए हैं, जिन्होंने भी भगवान का बहुत सुंदर गुणगान किया है। और उन स्थान जहाँ जहाँ पर आलवरों ने गुणगान किया है या भगवान के तीर्थ हैं, उसको दिव्य देशम बोलते हैं। ऐसे टोटली 108 दिव्य देशम जो भक्त साउथ इंडिया में रहे हैं या दक्षिण भारत में गए हैं वे जानते होंगे कि कांचीपुरम में हाउ मेनी पुरम्स, कांचीपुरम 8 या 10 दिव्य देशम एक ही स्ट्रीट के ऊपर है, गोवर्धन वीक दिव्य देशम है और लास्ट दिव्य देशम वैकुंठ है। उसके लिए हमेशा तैयार रहना, हरे कृष्ण। वी शुड ऑलवेज थिंक दैट दिस मे बी द लास्ट मिनट ऑफ माई लाइफ। यस, मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ, एक पॉइंट मुझे याद आ गया। एक भक्त ये मेरे सीनियर गुरु भाई, वो कुछ ये बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी, और वो उनकी उम्र हाली 50 या 55 वर्ष थी और वो अपने ग्रैंडसन के साथ घर में चल रहे थे भोजन के बाद, जैसे कोई थोड़ा घूमते हैं, अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया और कुछ ही क्षणों में मृत्यु हो गई। तो फिर मैंने जब ये समाचार दिया उनके गुरु महाराज को तो उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने उस दिन का जप पूरा किया था। तो मैंने पता लगाया कि उन्होंने जब वो सुबह ही पूरा करते थे। मैंने कहा हाँ, उस दिन का जब पूरा किया था। तो तब मुझे जवाब मिला कि देन इज अश्योर्ड ऑफ ऑस्पिशियस डेस्टिनेशन, उसका अच्छी गति की प्राप्ति। तो मैं इसलिए इस बात पे जोड़ देता हूँ कि जिस दिन मृत्यु होनी है उस दिन सवेरे जब कर लेना चाहिए। बाकी दिन नहीं किया तो कोई बात नहीं। जहाँ तक मुझे पता है कोई नोटिस नहीं होता। यू शुड ऑलवेज बी इन दैट बुक, आई मे डाई एनी मिनट, एवरी मोमेंट। इवन क्लास में बैठे हम कथा भी सुन रहे हैं, हमारी जीवा बंद भी है लेकिन हमारा हृदय गूंजते रहना चाहिए। इंटरनली वी शुड ऑलवेज बी क्राइंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पेशली आज के दिन कि रामानुजाचार्य को बहुत उत्साह था नाम प्रचार। मैं एक उनके जीवन की घटना बताऊंगा। मैं जो भी रामानुजाचार्य की घटनाएं बता रहा हूं वो ऑर्डर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है और जैसे मुझे याद आ रहा है मैं बता रहा हूं कि रामानुजाचार्य का उत्साह था कि नाम का प्रचार। ये सारे वैष्णव की कॉमन फीचर है, चाहे वो इस्कॉन से हों या बाहर से हों, उनकी एक ही मात्र इच्छा होती है कि सारे जीव दुखों से मुक्त हो जाएं। और दुख से मुक्त होने का एक ही तरीका है, वो है हरे नाम एव केवल। तो श्रीपद रामानुजाचार्य बचपन में यादव प्रकाश के पाठशाला में पढ़ते थे। यादव प्रकाश हालांकि संस्कृत और भौतिक विषय में बहुत उत्तीर्ण थे, आगे बढ़े थे, लेकिन वो उनके अंदर मायावाद के विचार थे उनके हृदय में। तो एक दो घटना हुए जिसे रामानुजाचार्य को बहुत दुख लगा। एक बार रामानुजाचार्य कुछ श्लोक पे चर्चा कर रहे थे और भगवान की आंखों का वर्णन आ रहा था, तो रामानुजाचार्य के जो गुरु थे, गुरु मतलब ये स्पिरिचुअल गुरु नहीं, जैसे कोई स्कूल में गुरु होता है उस प्रकार के, उन्होंने वर्णन किया भगवान की आँखों का। और बहुत ही जैसे कोई वानर के जो पिछले भाग का कलर होता है लाल, उसकी तरह की, ब्राह्मणाचार्य को बहुत दुख लगा, वो रोने लगे। यादव प्रकाश ने बोला, आप क्यों रो रहे हो? लेकिन ये अच्छा नहीं, आपने भगवान के नाम, भगवान की आंखों का वर्णन इस तरह से किया है। यादव प्रकाश को थोड़ा गुस्सा, बोले आप वर्णन करो इससे अच्छा। उन्होंने बताया कि भगवान की आंखें लाल हैं, वो करेक्ट है, लेकिन वो कैसे हैं, कमल के फूल की तरह। और इस तरह से थोड़ा हमने मतभेद होने लगा। यादव प्रकाश, उन्होंने योजना बनाई कि मैं सारे विद्यार्थियों को गंगा के किनारे ले जाऊंगा हरिद्वार की तरफ, और रामानुजाचार्य का मैं वध कर दूंगा। देखिए ईर्ष्या कितनी खराब चीज़ है, कि हालांकि यादव प्रकाश भी स्पिरिचुअली माइंडेड थे, लेकिन जब उनको लगा कि ये व्यक्ति मेरे मार्ग में कांटा बन रहा है, तो उसका नष्ट कर देना चाहिए। बहुत ही खतरनाक है ईर्ष्या। हमें इस्कॉन में भी अपने आप में प्रयास करना चाहिए कि मैं ईर्ष्या से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि ईर्ष्या जो है वो भक्तों में झगड़ा पैदा करती है, उसी से हमारे मूवमेंट को खतरा है। प्रभुपाद जी कहते थे मूवमेंट को बाहर से खतरा नहीं है, लेकिन माया देवी प्रयास करेगी कि भक्तों में विद्रोह पैदा करना, आपस में झगड़ा पैदा करना, वो सब ईर्ष्या से ही शुरू होते हैं, एनवी। तो यादव प्रकाश ने से प्लान बनाया कि सबको मैं ले जाऊंगा और वहाँ पर उसका अंत कर देंगे गंगा जी के पास में, तो डुबो के या मार के, और फिर शुद्धिकरण के लिए और एक गंगा स्नान कर लेंगे इस तरह, क्योंकि ब्राह्मण के पाप से मुक्त हो जाएंगे। देखो नियम सब पता थे, मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको ज्ञान कितना है, लेकिन वो ज्ञान को कैसे उपयोग करते हैं। रावण भी बहुत क्वालिफाइड था, रावण वॉज लाइक ब्राह्मण और शास्त्रों को जानने वाला था, लेकिन पालन नहीं करता था। हिरण्यकश्यप को कितना नॉलेज था, आप हिरण्यकश्यप का वो पढ़ेंगे प्रवचन सेवेंथ कैंटो में, तो लगेगा कि बेस्ट डिवाइस स्पीकर वही है, यू नो, विदाउट पीपीटी पावरफुल पॉइंट्स कर रहा है, यू नो। लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं थी, तपस्या। हिरण्यकश्यप क्या तपस्या थी, हजारों साल हाथ ऊपर, हमको कीर्तन में हाथ ऊपर करने में थोड़ा थकावट हो जाती है, लेकिन वो कितनी तपस्या कर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जोर जो है वो नम्रता पर और हरि नाम पर है, तपस्या पर उतना ज़्यादा नहीं। हालांकि तपस्या भी लाभकारी है, यूजफुल। तो रामाचार्य को ले गए सबके साथ में और उसी योजना बना रहे थे, और उनके कजन ब्रदर गोविंद वो जानते थे, तो उन्होंने उनको एक तरफ लाकर बता दिया कि आप सावधान रहिए, ये आपके वध करने का योजना बना रहे हैं। तो रामाचार्य वहाँ से निकल गए। लेकिन अब आप सोचिए, अब जंगल में हैं और कोई रास्ता नहीं, ऐसे नहीं कि मतलब कोई स्ट्रीट्स बने हुए हैं या बोर्ड है, और जीपीएस नहीं था उनके पास कि ऑन करके कांचीपुरम वापस पहुँचे, वो जंगल में थे और भाग रहे थे। उनको पता था कि शायद मेरे पर आक्रमण भी हो सकता है। फिर सूर्यास्त होने का समय आ रहा था, अचानक उनको एक शिकारी और उनके पत्नी दिखाई पड़े, जो उनको अपने साथ में ले गए। फिर रात्रि को वहाँ विश्राम किया, और सुबह शिकारी के पत्नी को पानी चाहिए था, तो रामाचार्य पानी लाने के लिए गए। पानी लाने गए तो देखा दोनों गायब हो गए। फिर उन्होंने देखा तो सामने वो शिखर दिख रहा था वरदराज मंदिर का कांचीपुरम, तो अपने वापस अपने घर आ गए। तो बाद में जब यादव प्रकाश लौट कर आए, पहले तो वो वैसे नकली आंसू बहा रहे थे कि रामाचार्य का जाने का हमें दुख हो गया, लेकिन जब लौट के आए तो देखा कि वो तो जीवित हैं, तब नकली खुश प्रकट करने लगे। थोड़े दिनों बाद अलबंदर यमुनाचार्य, जो श्री संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य हैं, के थोड़ा सा बैकग्राउंड, यमुनाचार्य बहुत पहले अच्छे कृष्ण भक्त थे, लेकिन अपने गुरु के आश्रम में थे, और उस समय एक राजा जो शैवाइट था, उसने चैलेंज किया, एक्चुअली नो सॉरी आई एम कन्फ्यूज, शैवाइट नहीं थे राजा, ये दूसरे राजा थे, उन्होंने चैलेंज किया। वो जिस आश्रम में यमुनाचार्य रह रहे थे बचपन में, उनके टीचर को चैलेंज किया था कि आपको टैक्स भरना होगा, या तो आप हमारे साथ आकर शास्त्रार्थ करो। यमुनाचार्य छोटे बालक थे, बोले कि मेरे टीचर तो नहीं है, लेकिन मैं शास्त्रार्थ करूँगा, और आप चाहते हैं कि मैं शास्त्रार्थ करूँ तो पालकी भेज दो मेरे लिए। तो उनको पालकी में लेकर गए, बहुत लंबी कहानी है, मैं यू नो कॉम्प्रेस्ड डेटा दे रहा हूँ आपको। और जब जब वो गए, शास्त्रार्थ किया गया, और उस समय यमुनाचार्य बहुत एक्सपर्ट थे। तो फाइनली यमुनाचार्य बोले थे कि आप बहुत छोटे मोटे प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई अच्छा प्रश्न पूछो, है ना। तो वो जो पंडित थे, कोलाहल उसका नाम था, कोलाहल ने बोला कि ठीक है, आप ही कोई प्रश्न पूछो। तो रामाचार्य ने यमुनाचार्य ने बोला कि तीन सत्य हैं, आप ये गलत सिद्ध करो कि जो पंडित है उसकी माता ये बांझ है, मतलब ये सिद्ध करना है कि ये बांझ है, इसका कोई पुत्र नहीं है और बेटा सामने है, ये सिद्ध करना है। तो कोलाहल कुछ बोल नहीं पाए। दूसरा बताया कि ये राजा जो है, जो हमारे वर्तमान राजा हैं, ये बहुत ही ईमानदार और धर्मशील व्यक्ति हैं, इसको गलत सिद्ध करना, वो भी राजा के सामने। आज के ज़माने में तो सिद्ध करना आसान है, लेकिन उस समय राजा का कैरेक्टर भी अच्छा था, तो कैसे सिद्ध करे। तो कोलाहल एकदम स्टंड। तीसरा उन्होंने बताया कि राजा की पत्नी जो जो रानी है वो पतिव्रता है बिल्कुल ही, इसको गलत सिद्ध करना है, राजा और रानी और पब्लिक के सामने। कोलाहल को बहुत गुस्सा है, बोले तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, छोटे बच्चे हो, हाँ तुम सिद्ध करके दिखाओ। तुमने बड़े ध्यान से नम्रता से जवाब दिया कि मनु संहिता में ये भी बताया गया है कि अगर कोई एक ही पुत्र है तो वह बांझ के समान है, वो तो इतना डेंजरस नहीं था, लेकिन दूसरा ये सिद्ध करना है कि राजा ईमानदार नहीं है, सब लोग सोच रहे थे क्या बोला, और अगर सिद्ध हो भी गया तो क्या गति होगी। देखते हैं कई हमारे पूर्व मंत्रियों की लीलाएं बाद में प्रकट होती हैं, आदि लीला मध्य लीला, कईयों के तो एक मिनिस्टर के मृत्यु के बाद पता चला कितनी प्रॉपर्टी थी उनके पास, है ना। हरे कृष्ण, ऑथोराइज अनऑथोराइज, है ना। लेकिन ये तो बहुत ईमानदार राजा थे। तो उन्होंने बताया ये राजा ये तो बहुत ही सज्जन है, धर्म के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार जब भी कोई प्रजा कोई पाप करते हैं या गलत कार्य करते हैं तो उसका एक हिस्सा जो है राजा को फल भुगतना पड़ता है। और क्योंकि कलयुग है, पाप ज़्यादा होते हैं पुण्य से भी, तो इसलिए राजा को भी ये पाप भुगतना पड़ता है। तो सिद्ध हो गया और राजा का कैरेक्टर भी नाम भी खराब नहीं था। लेकिन अब तीसरा और सेंसिटिव इश्यू था, राजा के सामने और महारानी भी सामने बैठे और दोनों चैलेंज है। रानी बोल रही थी कि यह लड़का जीत जाएगा, राजा बोल रहा था कि ये पंडित जी जीत जाएंगे। तो राजा ने कहा कि अगर ये बच्चा जीत गया तो मैं अपना आधा राज्य इसको दे दूंगा। रानी ने बोला कि अगर ये बच्चा हार गया तो मैं आपकी दासी की दासी बन जाऊंगा। अभी ये दासी की दासी बनना यानी इंसल्ट है, ये दासानुदास नहीं है, ये है कि यानी वेरी बैड फॉर द क्वीन टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द मेड सर्वेंट। तीसरा था, सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये महारानी पतिव्रता हैं, इसमें कोई शंका नहीं है हम सबको, लेकिन शास्त्र के अनुसार राजा के शरीर में सारे देवताओं का निवास होता है। हरे कृष्ण। और राजा स्वयं खड़े हो गए, अलवंदर अलवंदर यानी विक्टोरियस हो गए। उन्होंने अपना आधा राज्य सौंप दिया उनको और बोले कोलाहल को कट ऑफ मार दिया जाए। लेकिन यमुनाचार्य ने बोला नहीं, इसको माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, और उसको राज्य मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, राज्य मिलने के बाद वो भक्ति से अलग हो गए, व्यवस्था क्या भगवान बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तान, और थोड़े समय के लिए वो सब प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस छोड़ दिए। एक्चुअली भक्ति के साधना का प्रोसेस ऐसा है कि एक बार आप करते रहें तो अच्छा चल सकते हैं, लेकिन एक बार आपका गैप पड़ जाता है तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। पंजाबी बाग स्पेशल टेम्पल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ भक्तों की साधना भी बहुत अच्छी है। तो कल रात को मेरा द्वारका में प्रोग्राम था, प्रोग्राम रात को 10 बजे ख़त्म हुआ, तो मैं सोच रहा था कि वहीं पर रह के सुबह आऊँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर भक्तों के साथ जप करने को मिलेगा, इसलिए मैं रात को आया 11:30 बजे, और फिर सुबह मंगल आरती में इतना अच्छा लगा, यहाँ पर इतना अच्छा अटेंडेंस होता है, है ना, प्रभुपाद जी के जो इच्छा है उसके अनुसार ही हो रहे, अच्छा अटेंडेंस जपा सब मिलकर करना। दिस इज एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ, हियरिंग, चैंटिंग, श्रवण, कीर्तन, भगवान की कथाओं को सुनना, उनके नामों का जप करना, पुकारते हुए, जैसे एक छोटा बच्चा माँ को पुकारता है, उस भावना से पुकारना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी शुड क्राई लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर, बेगिंग फॉर कृष्णा मर्सी, जस्ट प्रेइंग कि कृष्णा मुझे स्वीकार कर लो, मैं इतना पापी हूँ, कई जन्मों से आपसे बिछुड़ चुका हूँ, अब आप मुझे वापस अपने चरणों में ले लो, प्लीज गिव मी द शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। एसेंशियली सारे संप्रदायों में भी, जैसे रामायण संप्रदाय में ओम नमो नारायणाय, नारायणम शरणम, नारायण नारायण की शरण में, या कृष्ण शरणम या राम शरण, भगवान की शरणागति एसेंस है। इनफैक्ट रामानुजाचार्य की जो प्रधान शिक्षा है प्रपन्नामृत, उनकी किताब है, प्रपन्न मतलब सरेंडर होना, तो उनकी समर्पण वो श्रीपद रामानुजाचार्य की भी शिक्षा है, क्योंकि एसेंशियली धर्म एक ही है, धर्म मतलब भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। तो श्रीपद रामानुजाचार्य, सॉरी यमुनाचार्य की मैं कहानी कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर मैं रामानुजाचार्य पे कनेक्ट हो जाऊँगा। तो यमुनाचार्य फिर राजा बन गए और इंद्र तृप्ति में लग गए, सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भूल गए। उनके जो ग्रैंड फादर थे, उसका नाम था नाथ मुनि, उनके मन में बहुत दुख था अपने आखिरी दिनों में कि मेरे पोते अब कृष्ण भक्ति छोड़कर माया में चले गए। तुमने अपने शिष्य को बोला राम मिश्र को कि मेरे जाने के बाद तुम प्रयास करना है कि उनको वापस इस्कॉन मतलब भक्ति में वापस लेकर आना। तो राम मिश्र सोच रहे थे अभी कैसे राजा को बताएं। तो मान लो आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलना है, तो ऐसे बड़े व्यक्ति से मिलना भी आसान नहीं होता, तो सोचे कैसे मैं राजा से मिलूं, अब मिलने के बाद भी कैसे बताऊं, आप राजा को बोल नहीं सकते प्रभु जी माया में हो, हाँ वो आपको ही भाई जेल में डाल देगा। तो कोई इंटेलिजेंस यूज़ करना होता है। तुमने क्या कि एक स्पेशल शाक ले आते हैं तुड़ वलाई, और वो शाक राजा के कुक को देते, राजा बहुत शाक को बहुत पसंद करने लगे, और एक महीने बाद वो शाक भेजना बंद कर दिया। तब राजा ने अपने रसोइये से पूछा कि क्या बात है आजकल वो शाक नहीं मिल रहा। बोले वो व्यक्ति ले आते थे आजकल ला ही नहीं रहे। बोले कौन है आप उसको बुला कर ले आओ। तुमको बुला कर ले आए। अब बात करते करते राम मिश्र ने बताया कि आपके दादा नाथ मुनि जाते समय शरीर छोड़ते समय उन्होंने आपके लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति रखी थी। राजा बोला हाँ मुझे जरूरत है, मैं पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण करने जा रहा हूँ, तो मुझे पैसे की बताओ कहाँ पर है संपत्ति, मैं अभी पूरी सेना को लेकर जाऊँगा। नहीं 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 नहीं, ये संपत्ति प्राप्त करने के लिए अकेले जाना होगा, ये संपत्ति जो है एक द्वीप में आइलैंड में रखी गई है, उसकी रक्षा सर्प कर रहे हैं, आपको मेरे साथ अकेले चलना होगा। तो यमुनाचार्य निकल पड़े उनके साथ में, और चलते 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 वो कावेरी नदी के पास में पहुँचे। नदी के पास पहुँचते वो थोड़े थक गए थे, एक पेड़ के नीचे एक गार्डन में विश्राम कर रहे थे, और तब राम मिश्र भगवद गीता का गान करने लगे सारे अध्यायों का, और वो 12वें अध्याय के श्लोक पे पहुँचे, मयेव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशय सेव मयेव अत ऊर्ध्वम न संशय, कि मेरे में बुद्धि लगाओ, मेरे मन लगाओ। अरे सुन के अचानक यमुनाचार्य को अपना सारा पिछला जीवन याद आने लगा कि कैसे मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, उनके आंखों में आंसू आने लगे। बोले मैं वापस राज्य नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति करना चाहता। उन्होंने बताया ठीक है, लेकिन अभी आपको मैं संपत्ति के पास ले जाता हूँ। फिर उनको ले गए श्रीरंगम मंदिर में, जो आइलैंड है द्वीप में, यहाँ पर भगवान रंगनाथ जी लेटे हुए हैं, और भगवान का दर्शन कराया। यमुनाचार्य फिर पूर्ण रूप से भगवान के नाम प्रचार। तो ये यमुनाचार्य श्रीरंगम में रहते थे, और एक बार वो कांचीपुरम आए जहाँ पर रामानुजाचार्य रहते थे, और उन्होंने देखा तो देख के ही समझ गए ये महान व्यक्ति हैं जो मेरे जाने के बाद धर्म का ये श्री संप्रदाय को संभाले। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि ये रामानुजाचार्य को ये यादव प्रकाश के चंगुल से मुक्त कर दो। और थोड़े दिनों बाद उनमें आपस में कुछ मतभेद हुआ और रामानुजाचार्य अलग हो गए। लेकिन बीच में एक और घटना हुई कि यमुनाचार्य का स्वास्थ्य बहुत खराब था और वो शरीर छोड़ने वाले थे। उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि जाओ तुम रामानुजाचार्य को बुला कर ले आओ। पता चलता है कि गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी पर आधारित नहीं है कि कितना हम शारीरिक रूप से गुरु के पास है। रामानुजाचार्य तो यमुनाचार्य से घनिष्ठता से मिले भी नहीं थे पास से, लेकिन यमुनाचार्य उनको याद कर रहे थे अपने अंतिम समय पर। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे भी अपने गुरु महाराज का बहुत संग नहीं मिला, प्रभुपाद जी कई गुरु भाई थे जिनको ज़्यादा संग मिला। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देयर वाज नेवर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट फील हिज प्रेजेंस, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा कि मैं अपने गुरु से अलग हूँ, क्योंकि गुरु वाणी के द्वारा हम गुरु का संग करते हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे और इस्कॉन स्थापना होने के एक साल बाद उनको हार्ट अटैक आया और प्रभुपाद जी वापस भारत लौट रहे थे, तो एयरपोर्ट कुछ भक्त थे, गुरुदास प्रभु, यमुना माता जी और कई सीनियर डिवोटीज, उनके आंखों में आंसू थे। तो प्रभुपाद जी आप जा रहे हो? प्रभुपाद जी बोले, आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा, यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, सो वी आर यूनाइटेड, है ना। आप हरे कृष्णा गा रहे हैं, मैं हरे कृष्णा गा रहा हूँ। यहाँ इस्कॉन में भी कभी कभी दुख होता है, क्योंकि इस्कॉन के वर्तमान जो भी गुरु हैं, गोपाल कृष्ण महाराज, जयपतक महाराज, भक्ति चारू महाराज, लोकनाथ महाराज, राधानाथ महाराज, भक्ति विकास महाराज, सब इतने बिजी रहते हैं तो संघ कई बार नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से भगवान का नाम ले रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आप सच्चे दिल से गुरु आज्ञा पालन कर रहे हो और इस प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, तो आप अपने गुरु के साथ जुड़े हुए। प्रभुपाद जी बोलते जैसे मेरे पैर पर एक मक्खी है, राजा के पैर पे कोई मक्खी है, या प्रभुपाद अपने पैर बोलते हैं, किसी को लगेगा ये मक्खी कितने भाग्यशाली है, नहीं, लेकिन राजा सोच रहे हैं तो परेशान कर रहे हैं हमें। तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुरु की आज्ञा पालन करना। तो जब रामानुजाचार्य गए यमुनाचार्य से मिलने के लिए, तो उनको पता चला कि वो ऑलरेडी चले गए थे। उन्होंने देखा कि उनकी उंगलियाँ, तीन उंगलियाँ ऐसे बंद हैं। उन्होंने पूछा, ये कैसे है, क्या उनकी उंगलियाँ हमेशा ऐसे रहते थे? तो नहीं, ऐसे तो नहीं होते थे। तो रामानुजाचार्य ने मन ही मन तीन संकल्प किए। एक तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं पूरे भारतवर्ष में भगवान नारायण की भक्ति का प्रचार करूंगा। ऐसे संकल्प किया तो एक उंगली खुल गई। दूसरा संकल्प किया उन्होंने कि मैं वेदांत सूत्र के ऊपर एक वैष्णव कॉमेंट्री लिखूंगा, श्री भाष्य, और उनकी दूसरी उंगली खुल गई। और तीसरा संकल्प किया कि मैं एक शिष्य का नाम पाराशर ऋषि के याद करते हुए उनका नाम रखूंगा, एक शिष्य का नाम पाराशर भट्ट, तीसरी उंगली भी खुल गई। इसके बाद रामानुजाचार्य फिर वापस लौट कर आए कांचीपुरम। बहुत सारी घटनाएं हुई, मैं शॉर्ट में सब बता रहा हूँ। उनका विवाह हुआ, उसका पत्नी का नाम रक्ष कम्बल थी। उनकी पत्नी, हालांकि वो भी भक्त थे, उतने एडवांस नहीं थे, तो प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि कभी कभी ऐसा होता है कि यू नो थोड़ा तकलीफ होती है फैमिली लाइफ में, वो भी सबसे बड़ा आशीर्वाद मानना चाहिए। तो उनकी पत्नी ने उनको ज़्यादा रीति रिवाज में ज़्यादा इंटरेस्ट था। रामानुजाचार्य का जोर था कि वैष्णव मतलब कैरेक्टर, जाति महत्वपूर्ण नहीं है। तो उनके एक शिक्षा गुरु थे महापूर्ण, उनके पत्नी उनके घर में रह रहे थे। अरे एक बार उनके महापूर्ण के पत्नी कुछ पानी निकाल रहे थे और वो रामानुजाचार्य के पत्नी के बकेट में टच हो गया, तो बहुत गुस्से हो गए। तो क्या समझते हो, आप लोग शूद्र हो, अपने हमारे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के बर्तनों को तुमने खराब कर दिया, और सब बर्तन को सफाई के कड़वे शब्द बोले। तो महापूर्ण फिर चले गए। रामानुजाचार्य लौट कर आए तो पूछे, क्या हुआ, हमारे गुरुदेव कहाँ चले गए? बोले, तुमने ऐसे ऐसे पानी गिराया था और मैंने ज़्यादा कठोर शब्द तो नहीं बोले, लेकिन फिर वो चले गए। हमने सुना था कि आपके गुरु तो बहुत सहनशील होते हैं। तब रामानुजाचार्य मन में प्लानिंग करने लगे कि इट्स टाइम टू लीव, है ना, वो घर छोड़ने का सोचने लगे। और एक बार दूसरी घटना हो गई कि उनके घर में कोई एक भिक्षुक आए थे, उनको बहुत भूख लगी थी, इतने कमज़ोर थे कि उनका ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल पेट अंदर ही गया होते, इतने भूखे थे। और रामानुजाचार्य के पत्नी ने उनको बहुत डांट दी, बोले तुम क्या समझ रखा है, यहाँ पर निकल जाओ यहाँ से। तो वो बहुत ही निराश भाव में निकल रहे थे और रास्ते में रामानुजाचार्य से मिल गए। तो रामानुजाचार्य ने पूछा, हमसे आप कहाँ से आ रहे हो? बोले, आपके घर से आ रहा हूँ। बोले, क्या हुआ? बोले, भोजन नहीं मिला। ठीक है, अभी मैं आपको एक चिट लिख के देता हूँ, इस बार आपको भोजन जरूर अच्छा मिलेगा। तो उन्होंने लिख के दिया एक पत्र, ऐसा लिखा कि मानो रामानुजाचार्य के ससुर लिख रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े डिवोटीज भी देखो कितने चालाकी करते हैं। तो चालाकी करना गलत नहीं है, लेकिन किस उद्देश्य से करते हैं। मैं चालाकी करूँगा कि किसी और के नाम से लेके स्वीट राइस खा लिया, वो गलत है, है ना। लेकिन रामाचार्य चालाकी कर रहे थे कि उसको भोजन मिल जाए, है ना। दोनों में फ़र्क है। कभी कोई चालाकी करता है दूसरे भक्त को प्रसाद देने के लिए, और मेरे जैसे भक्त अपने लिए चालाकी करते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, है ना। कृष्ण की सेवा के लिए अपने नियम, अपना यू नो कुछ नियम बदलना, या अपनी सेवा के लिए बदलना। रामाचार्य लेटर लिखा कि जैसे उनके ससुर लिख रहे हैं कि प्रिय रामानुज, मेरी दूसरी बेटी, यानी रामाचार्य की पत्नी का नाम रक्षा कंबल था, रक्षा कंबल की बहन का विवाह निश्चित हुआ है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप अपनी पत्नी को थोड़े दिन के लिए घर में भेज दो, और आप भी आ जाओ, लेकिन आप नहीं आ सकते कोई बात नहीं, उनको तुरंत भेज दो। हरे कृष्ण साईं बुद्धि बुद्धि मधाम। तो वो लेटर लेके जब वो गए, आप जानते हैं कि एक स्त्री को अपने माता पिता के घर से कोई पत्र आए तो बहुत खुशी होती है मैके से, है ना। तो वो पत्र को देख के बहुत खुश हो गए, उन्होंने बहुत फिर अच्छा भोजन कराया उनको, है ना, इडली डोसा सांभर जो है जब ये साउथ में आते हैं, बहुत पेट भर के खिलाया। और फिर जब उनके पति लौट के आए तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे लगता है जाना पड़ेगा, क्यों, पत्र आया। रामानुज पत्र को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। ये तो आपका जाना जरूरी है, इसलिए आप जा सकते हैं, मैं बाद में आऊँगा। जैसे वो गए तो रामानुजाचार्य ने जाके संन्यास ले लिया। कितने ट्रिक्स यूज करने पड़े। इवन मध्वाचार्य को संन्यास है तो उसके पिताजी बोले नहीं, तो वो बोले कि मैं लेना चाहता हूँ, तो पिताजी उनके चरणों में गिर गए, मत जाओ छोड़ के, देखो पिताजी आपने मेरे को दंडवत प्रणाम किया है। माता पिता बच्चे को तभी दंडवत करते हैं जब वो सन्यासी होता है। मैं सिर्फ सन्यास की ट्रिक्स बता रहा हूँ, मैं ऐसे जनरल बता रहा हूँ, कोई प्लान नहीं है। रियल सन्यास का मतलब एक्चुअली है कि अपने काया मन वचन को भगवान की सेवा में लगे। एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है अगर वो सच्चे दिल से भगवान का नाम लेते हैं और प्रभुपाद की सेवा में लगे रहते। तो फिर मध्वाचार्य, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फाइनली मध्वाचार्य बोलते हैं कि मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, आपको मिलूँगा नहीं, या तो आप परमिशन दो सन्यास के लिए, फिर मैं आपसे मिलता रहूँगा। तो तुरंत फिर परमिशन मिल जाती, इट्स ट्रेडिशनल है। तो रामानुजाचार्य सन्यास लेने के बाद फिर भ्रमण करने लगे। बहुत सारी घटनाएँ हैं, हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं, तो मैं दो दो मिनट में 5 घटनाएँ बता दूँगा, जिससे कि मैं कथा का अंत भी कर सकूँ। रामानुजाचार्य के बहुत ही पावरफुल डिसाइपल्स थे एक्चुअली मंत्र, हालांकि उनके गुरु महापूर्ण थे, लेकिन महापूर्ण उनके कई शिक्षा गुरु थे, महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, शैलपूर्ण, कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण बचपन में उनके साथ में बहुत रहते थे, और एक बार कांचीपूर्ण का भगवान से डायरेक्ट बातचीत होता था। कांचीपूर्ण की सेवा थी कि भगवान वरदराज, वरदराज आप में से कोई कांचीपूर्ण, कांचीपुरम गए? कांचीपुरम बहुत सुंदर डीटीज है, उसका नाम है वरदराज स्वामी। तो उनकी सेवा थी कि वरदराज स्वामी को पंखा करना, वे चंवर लेके पानी में डालते थे, और जैसे गर्मी के मौसम में, पिछले आज मैंने सुना बम्बई दिल्ली में भी हीट वेव्स आ रहे हैं, पूरे इंडिया में एडवाइस दिए गए बहुत पानी पीने के लिए, तो पंखा कर रहे थे। और रामानुजाचार्य ने भगवान से, रामानुजाचार्य हमेशा वैष्णव की सेवा करते, उनका जोर वैष्णव की सेवा पे था, तो उन्होंने बोला कांचीपूर्ण से, आप भगवान से निवेदन करो, ठाकुर जी से पूछो कि क्या मुझे कभी उनकी प्राप्ति होगी। तो पंखा करते करते भगवान से बातचीत करते थे, लाइक हॉट स्काइप, यू नो लाइव स्काइप, यू नो भगवान डायरेक्टली आंसर करते। उन्होंने बोला कि रामानुजाचार्य पूछ रहे हैं क्या उनको प्राप्ति होगी। भगवान वरदराज बोले, वरदराज डीटीस एक ब्रह्मा जी जब यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के बीच में से प्रकट हुए। ओरिजिनल डीटीस अभी भी साउथ इंडिया में कांचीपुरम, चेन्नई से करीब 70 किलोमीटर होगा। तो उन्होंने डीटीस को, सॉरी भगवान ने जवाब दिया, रामानुजाचार्य मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं, जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं, इसलिए जरूर उनको इसी जन्म में मेरी प्राप्ति हो। तो कांचीपुरम चंवर कर रहे थे, वो सोचने लगे व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या होगा। तो भगवान ने उनका जवाब दिया कि आप तो मेरी सेवा कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन निश्चित नहीं है कि आपको मेरी प्राप्ति होगी, अगर आप मेरे भक्तों की करोगे तो जरूर होगी। शास्त्रों में बताया गया, जो व्यक्ति कहता है मैं आपका भक्त, वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो तुरंत वो चंवर छोड़ के गए भक्तों की सेवा करने। अभी वो इतने सीनियर भक्त हैं, जो ना कोई सीनियर सन्यासी अगर सेवा करने जाए प्रसाद, तो शायद उनको कोई मना कर देंगे, सब बोलेंगे नहीं आप बैठिए ग्रहण करिए। तो उन्होंने वेश बदल दिया, भगवे वस्त्र छोड़ के सादे वस्त्र धारण करके प्रसाद सर्विंग करने लगे। कई बार हम लोग वस्त्र बदलते हैं कि प्रसाद ग्रहण करने के लिए कि ना स्पेशल एंट्री लेने के लिए ना, और वो वेश बदल रहे थे सर्विंग के लिए। करते रहे 2 महीने तक। एक दिन बहुत जोर से बरसात हो रही थी, उनके सारे कपड़े भीग गए थे, तो उन्होंने फिर वही पुराने भगवे वस्त्र पहन लिए। किसी ने पहचान लिया, अरे ये तो कांचीपुरम है, इतने बड़े सन्यासी। तो उन्होंने उनको माफ़ी मांगी और बोले आप तो भगवान के इतने इंटीमेट पार्षद हैं। फिर से वो चंवर करने लगे, भगवान से पूछा व्हाट अबाउट नाउ। भगवान बोले अब आपने भक्तों की सेवा की, इसलिए निश्चित आपको मेरी प्राप्ति होगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकारम। रामानुजाचार्य, एक बार तो बहुत सारी घटनाएं, रामानुजाचार्य को जब बोला गया मंत्र लेने के लिए गोष्ठीपूर्ण के पास गए, तिरुकुटी और साउथ इंडिया में स्थान है। गोष्ठीपूर्ण बोले कि अभी नहीं, बाद में फिर से आना। एक बार, दो बार, तीन बार, 17 बार मना कर दिया गया। अंत में भगवान ने स्वयं पुजारी के द्वारा मैसेज भेजा कि रामानुजाचार्य तो परम क्वालिफाइड है, अब उनको मंत्र दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो बुलाया और बोले मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, गुप्त मंत्र है, आप किसी को बताना मत। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, जो भी मंत्र को ग्रहण करेगा वह सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन आप किसी को मत बताना। और फिर उन्होंने मंत्र दिया, कौन सा मंत्र, सब लोग जोर से आज रामानुजाचार्य के खुशी के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना भाव से बोलिए, ओम नमो नारायणाय, कि आप किसी को मत बताना। लेकिन रामानुजाचार्य सोचने लगे कि यह मंत्र बहुत पावरफुल है, तो सबको मिलना चाहिए, जो ये मंत्र सुनेगा जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। तो सबको बुलाया, पंजाबी बाग से, पश्चिम बिहार से, द्वारका से, रोहिणी से, सबको बुलाया एक छोटे से पर्वत के ऊपर। बोले आप मेरे को बहुत प्रिय हो, मैं आपको वो मंत्र देना चाहता हूँ जिससे आप सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, और ये मंत्र दिया। अष्टाक्षरीय मंत्र, 8 सिलेबल मंत्र। तो फिर सब मंत्र लेके चले गए। गोष्ठीपूर्ण को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने आदेश दिया रामानुजाचार्य को बुलाओ। वो डांटने लगे, यू रास्कल, हमने क्या कर दिया, आपको मालूम है कि जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसको क्या गति होती है। बोले गुरुदेव मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो गुरु की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है उसको नरक में जाना पड़ता है, लेकिन आपने बताया कि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि मंत्र के प्रभाव से सारे जीव भगवत धाम जा सकते हैं। तो मैंने सोचा इतने सारे जीव भगवत धाम चले जाएंगे और मैं तो एक तुच्छ जीव हूं, अगर मैं नरक में भी गया तो क्या फर्क पड़ता। तो गोष्ठीपूर्ण के आंखों से आंसू आ गए, वो उनके चरणों प्रणाम करने लगे, बोले कि आप एक्चुअली आप मेरे गुरु बनने लायक, आपके अंदर ये भावना। पता चलता है वैष्णव का मतलब है हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, पर दुख दुखी। वासुदेव दत्त ठाकुर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सारे जीवों को भगवत धाम ले जाओ, और अगर उनके पाप ज़्यादा हैं तो वो पाप मुझे दे दो, मैं सबके पाप लेने को तैयार हूँ। रामानुजाचार्य के एक बहुत ही प्रिय सेवक होते हैं, इनका नाम होता है खुरेश। मैं लास्ट की कहानी पहले बता रहा हूँ और थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ। खुरेश कि क्या कहा जाए, अगर 1000 मुँह से भी उनका जय जयकार किया जाए तो कम है। शिष्य के द्वारा गुरु का भी चरित्र पता चलता है, इसलिए आप सब जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या प्रभुपाद जी के शिष्यों के शिष्य हैं, तो हमारा चरित्र इतना शुद्ध होना चाहिए जिससे कि गुरु और परम गुरु का नाम बहुत ज़्यादा ज्योतिर्मय हो, प्रकाशमय हो। अगर हम कोई गलती करते हैं तो गुरु के ऊपर कलंक हो जाता है। तो रामानुजाचार्य कि खुरेश ऐसे बताते हैं कि एक राजा थे कोलटुंग, जो शैव धर्म का प्रचार कर रहे थे, और उनको बहुत ये था कि सबको शैवाइट बनना चाहिए। है ना, ये बहुत डेंजरस टेंडेंसी है, कई बार धर्म में हो जाता है कि सबको मेरा ही धर्म स्वीकार करना चाहिए। जैसे इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म बोनाफाइड है, लेकिन ये भावना कि सबको मेरे धर्म में आना चाहिए, ऐसे नहीं तो पैसे दे के मार काट करके कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सबको मेरे ही मंदिर में आना चाहिए, क्योंकि मैं इस मंदिर में हूँ, परम पवित्र मंदिर है ये, है ना। भगवान तो हैं कि नहीं फर्क नहीं, लेकिन मैं हूँ। अपने आप को केंद्र में रखने से हमें कृष्ण को केंद्र में रखना है, फिर यूनिटी हो सकती है अलग अलग धर्मों में, अलग अलग गुरुओं में, अलग अलग मंदिरों में, कि कृष्ण एक ही हैं, चाहे वो अलग अलग नामों से जान रहे हैं, जाने जा रहे हों। तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा कि रामानुचार्य को भेज दो। तो रामानुचार्य के शिष्य कुरेश, वो जानते थे कि ये राजा रामानुचार्य का वध करेगा, तो बोले कि ठीक है, आप मत जाओ गुरुदेव, आपका जीवन ज़्यादा मूल्यवान है, आपकी जगह मैं जाता हूँ। और उनका हुलिया, उनका फेस बिल्कुल रामानुचार्य की तरह था। तो रामानुचार्य ने सफ़ेद कपड़े पहन के वो साइड से निकल गए और उनके शिष्य कुरेश गए डिबेट करने। रामानुचार्य उस समय 12 वर्ष तक मेलकोटे में रहे, दक्षिण भारत में एक स्थान है, यादवगिरी भी बोलते हैं उसको, वहाँ पर बलराम जी भी आए थे। उसकी बहुत सारी लीलाएँ फिर कभी मैं बताऊँगा, बलराम जी यहाँ पर भी हैं। कई बार हम सोचते हैं बलराम जी खाली हैं, यहाँ भी बलराम जी हैं, कृष्ण बलराम जी। रामानुजाचार्य कुछ भाग गए वहाँ से, धर्म का प्रचार कितना चैलेंजिंग है, इतने बड़े संत को भी जीवन का खतरा होता है, उनको छिप के रहना पड़ा 12 वर्ष के लिए। वहाँ पर उस समय उन्होंने जैन संप्रदाय के कई जैन को वैष्णव बना दिया और बहुत सारी कृपा बहुत सारे भक्तों के ऊपर की। इधर कुरेश को ले गए और उनसे चैलेंज किया, बताओ शिव श्रेष्ठ है या विष्णु श्रेष्ठ है? फिर इसमें कोई शंका ही नहीं है, विष्णु श्रेष्ठ है। और बहुत कन्विंसिंगली उन्होंने उनको अच्छी तरह के तर्क से बता दिया। तब सुनने के बाद राजा ने आदेश दिया इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। फिर किसी ने याद दिलाया, ये रामानुजाचार्य है। जब राजा की बेटी बहुत छोटी थी, उसके शरीर में एक भूत आ गया था। भूत मतलब बेसिकली कोई आत्मा, वो शरीर नहीं मिल रहा है, वो दूसरे शरीर में आ जाए। भूत यानी सिम कार्ड है लेकिन हैंडसेट नहीं है ना। तो दूसरे के डबल सिम वाले में एग्जाम्पल जहाँ मैं बताता हूँ सब लोग तुरंत जाग जाते हैं, क्योंकि आज मोबाइल वर्ल्ड है ना। तो भूत उसके शरीर में आ गया और बहुत बहुत पेनफुल होता है। मैं एक बार कुछ भक्तों के साथ यात्रा में, मैं यात्रा लीडर था करीब 10 साल पहले, और 150 भक्त थे, और एक माता जी के शरीर में भूत आ गया था मायापुर में, बहुत पीछे। मैं भी कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि सब डर जाएंगे, कोई यात्रा में नहीं जाएगा। लेकिन अंत में भूत बोल रहा था कि आप जगन्नाथ पुरी जा रहे हो, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। एक्चुअली कोई पूर्व जन्म में कभी कभी कोई पाप के कारण ऐसा हो गया, लेकिन अंत में बाद में मुझे पता चला कि माता जी 16 माला करते थे, उन्होंने 16 माला जब बंद करके 8 माला कर दिया था, जिससे मुझे एक परपट लेसन कि अगर आप अपना जपा कम करते हो, बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है। एनीवे अभी तो फिर से 16, वो यात्रा के बाद तुरंत 16 राउंड शुरू हो गया विदाउट कन्विंसिंग, है ना। तो रामानुचार्य, कुरेश की कहानी बता रहा था, कुरेश को रामानुचार्य, वो जो जब वो राजा की लड़की के शरीर में भूत आ गया तो यादव प्रकाश के पास ले आया। मैंने आपको बताया यादव प्रकाश कौन थे, रामानुचार्य के स्कूल टीचर, वो भी एक्सोर्सिस्ट थे, मतलब ओझा। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मंत्र बोले और प्रेत को निकालने के लिए, लेकिन भूत नहीं निकला। भूत हंसने लगा, हा 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 हा, हे यादव प्रकाश, तुम्हारी शक्ति नहीं है मुझे यहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि तुम्हारे मंत्रों से ज़्यादा मेरी शक्ति है। लेकिन तुम्हारे पाठशाला में एक विद्यार्थी है रामानुज, वो महान भक्त हैं, अगर उनके चरणों की धूल अगर लड़की के शरीर में दी जाती है तो मैं छोड़ दूँगा। लेकिन अगर लड़की के शरीर को धूल मिली तो मुझे भी धूल मिलेगी, है ना। भूत यानी शेयर डेटा, यू नो, अपना कुछ नहीं है, यानी जो भी अगर मालिक ने इडली खाया तो भूत ने भी खाया सब। तो रामानुज से रिक्वेस्ट करते हैं, तो रामानुज बड़े नम्रता से स्वीकार करते हैं। पैर रखते ही मैं एक पेड़ की डाली के ऊपर, वो भूत बोलते जब मैं छोड़ूंगा तो डाली को तोड़ूंगा, तो छोड़ के जाता है, आवाज आती है, बोलता है, तो याद दिलाते हैं, इसने आपकी बेटी के जान को बचाया था, आप इसको मृत्यु दंड दे रहे हो, मुझे ठीक है कंसेशन देते हैं, इनकी आंखों को निकाला जाएगा। चलिए और भी पेनफुल, कुरेश और महापूर्ण दोनों को ले जाते हैं जंगल में, उनकी आंखें निकाल, कितना कितना पेन होगा और हमारे में से कौन होगा तो बोला जाए कि अगर आपके गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए आंखें निकालनी है, वो खुशी से बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं भगवान को जो आंखें निकाल रहे थे उनको कि आप मुझे मेरे गुरुदेव की सेवा करने का एक सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। आप में से कौन है जरा सोचिए मन में, या मे बी आप लैपटॉप दे सकते हैं गुरु को, यू नो हो सकता है आप कोई भौतिक चीज दे सकते हैं, लेकिन प्राण देना जरूर कुछ होंगे आप में से, मैं नहीं बोल रहा कोई नहीं है, लेकिन ये रियल चैलेंज है। अपने गुरु के लिए हम बोलते हैं गुरुदेव मेरा शरीर मन सब आपका है, दीक्षा के समय हम वचन देते हैं, लेकिन कुरेश आज के दिन हम कुरेश को याद कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें मिथ्या अहंकार को जो भी हमारे अटैचमेंट्स है उसको गुरु की प्रसन्नता के लिए त्याग कर सकते। तो महापूर्ण तो वही देह त्याग कर देते हैं, वो सहन नहीं कर पाते, कुरेश को वहीं छोड़ दिया जाता है। और जो निकालने वाले होते हैं उनको भी इतना दुख लगता है, वो अपने जेब से पैसे निकाल के कुछ जंगल में कुछ व्यक्ति को देते हैं कि आप इनको वापस कहीं ले जाओ, क्योंकि इसको कहाँ जंगल में छोड़ो, उनको वहाँ पर वापस कांचीपुर में ले जाते हैं। और फिर वो बाद में श्रीपाद रामानुजाचार्य से मिलते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने गुरु की, सॉरी अपने शिष्य की गुरु भक्ति देख के, और रामानुजाचार्य बोलते हैं कि कुरेश अब जाओ वरदराज भगवान के पास जाओ और उनसे भिक्षा मांगो, उनसे बोलो कि आपकी नेत्रों की दृष्टि वापस दे दें। तो भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु वो राजा को लटूंगा जिसने मेरे प्रति अपराध किया है, उसके अपराध को क्षमा कर दो, वापस आ जाते। आप सोचिए आप में से कौन है जैसे प्रार्थना करते, जैसे प्रार्थना करते भगवान उसने मेरी आंखें निकाली, उसके आंखें कान सब होलसेल निकाल दो, इंटरेस्ट के साथ सजा दी जानी चाहिए, है ना, लेकिन प्रार्थना कर। ये कुछ कुछ हरिदास ठाकुर की तरह, तो सब संप्रदाय में कॉमन फीचर है तितिक्षा कारुणिका सुहृद सर्वदेही, ये कॉमन फीचर्स ये हैं जो इसे हम जज कर सकते हैं वैष्णव, और वैष्णव से उसके गुरु को जज कर सकते हैं कुरेश के गुरु। तो फाइनली वो फिर से गुरु जी बोलते हैं कि आप फिर से जाओ, इस बार वो प्रार्थना करते हैं उन जल्लादों के लिए जो उनको आंखों को निकालते हैं, और तीसरी बार उनके गुरुदेव बोलते हैं आप समझ नहीं रहे, आप जाओ भगवान से बोलो कि आंखें मेरी संपत्ति नहीं है, ये मेरे गुरुदेव की प्रॉपर्टी है, और गुरुदेव की सेवा के लिए आप ये आंखें वापस दे दो। तो जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, और एक हवा चलती है भरद्वाज स्वामी को स्पर्श करते हुए, उनके नेत्र ज्योति वापस आ जाए। यही कुरेश बहुत बहुत महान भक्त, बहुत सारे ग्रंथों को लिखते हैं, उनके भी पुत्र होते हैं, इसका एक का नाम पराशर रखा जाता है। एक बार रामानुजाचार्य तिरुपति जाने का सोच रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कैसे चलूँ, तिरुपति जो भगवान वेंकटेश रहते हैं वो पर्वत जो है वो अनंत शेष का अवतार है, मैं अनंत शेष के ऊपर पैर कैसे रख सकता हूँ, मैं नहीं चढ़ूंगा। फिर सारे भक्तों ने बोला आप नहीं चढ़ोगे तो कोई भी नहीं जाएगा, फिर भगवान का दर्शन कैसे होगा। बोले ठीक है मैं चढ़ूंगा लेकिन अपने घुटनों के बल से, इवन क्रॉलिंग। और महापूर्ण उनके दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, उनको मालूम पड़ा रामानुजाचार्य आ रहे हैं, तो पर्वत के ऊपर से नीचे आए उनके लिए प्रसाद लेके। तो रामानुजाचार्य बोले गुरुदेव आप क्यों ले आए प्रसाद, किसी और इनसिग्निफिकेंट तुच्छ छोटे भक्त को भेजना चाहिए, नहीं जनरली कोई बोलने के बोले प्रसाद का पैकेट देना है तो कोई सीनियर सन्यासी नहीं जाएंगे, कोई नए डिवोटी को बोलेंगे आप सेवक। तो महापूर्ण बोले यस मैंने भी यही सोचा कि जो सबसे तुच्छ भक्त है उसको जाना चाहिए, तो मैंने बहुत विचार करके मैं आया क्योंकि मैं सबसे तुच्छ। एक बार तो जब वो एक गांव से गुजर रहे थे, वो कई शिष्यों के साथ से करीब 100 शिष्य, उन्होंने एक मैसेज भेजा अपने शिष्य को कि मैं आ रहा हूँ आप प्रसाद रेडी रखिए 100 भक्तों के लिए। ये मैसेज मिला तो इतने खुश हो गए गुरु जी आ रहे हैं गुरु जी आ रहे हैं, और जब मैसेज दे के देने उसका ख्याल ही नहीं रखा, तो पूछा नहीं कि आपने पानी पिया प्रसाद लिया कुछ नहीं। तो डिवोटीज आके रिपोर्ट किए रामानुज को कि हमने मैसेज दे दिया, मैसेज दे दिया आपने, लेकिन उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। बोले हमारी तरफ तो बिल्कुल निगलेक्ट किया हमको। बोले ठीक है हम यहाँ नहीं जाएंगे, और एक भक्त घर में जाएंगे जो बहुत गरीब है उनके घर में जाएंगे। तो उस घर में गए और वो इतने गरीब थे वो भिक्षा मांग के रहते थे, और उनके पत्नी का जब मैसेज मिला तो सोचने लगे कैसे मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, कुछ तो मुझे करना होगा। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो व्यापारी था, उसका चरित्र अच्छा नहीं था, और स्त्री का नाम जो रामानुजाचार्य की शिष्य का नाम लक्ष्मी था, तो लक्ष्मी कई बार बुरी दृष्टि से देखता था, लेकिन लक्ष्मी कभी उनके विचार को स्वीकार नहीं करती। अब सिचुएशन को देख के उन्होंने उस व्यापारी को संदेश भेजा कि मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने को तैयार हूँ, आप मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, आप जो भी सामग्री मुझे चाहिए, चावल, आटा या गेहूँ या सब्जियाँ, सब आप मुझे दे दो। उसको आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने सब सामग्री भेजी और उसने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया, अपने पति को भी बताया कैसे करना पड़ा। तो पति बोले, यस, गुरु सेवा ही सर्वोपरि है, हम पहले गुरु की संपत्ति हैं, फिर एक दूसरे संबंध है। और जब ब्राह्मण विचारे आए, उनके आव भगत को, उनकी सेवा भावना को देखकर इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने पूछा, लेकिन आप पैसे कहाँ से लाए? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे, उनको लगा कि मैंने कुछ गलती की। ब्राह्मण विचारे बोले कि आप मेरा उच्चिष्ट प्रसाद लेकर उस व्यापारी को दो। जाकर वो उच्चिष्ट प्रसाद व्यापारी को दिया तो उसका भी चरित्र बदल गया और वो भी उनकी सेवा में बुरे विचार को त्याग करके आ गए। ऐसे ही रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे धनुर्दास, जो पहले बहुत पावरफुल थे और एक स्त्री के प्रति बहुत अटैच थे। जब श्रीरंगम, जैसे आज समझो ग्रेटर नोएडा में रथ यात्रा है, कल है ना, कल या आज, कल है या फरीदाबाद में भी है कल, तो रथ यात्रा में सब लोग जगन्नाथ जी पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर जब भगवान की यात्रा हो रही थी तो पूरा ध्यान अपने वो स्त्री के प्रति, जो विवाहित भी नहीं थे, हेमाम्बा, और वो एक छत्र धारण करके उसकी तरफ देख रहे थे। व्यवसायत्मिक बुद्धि रह के है गुरुनंदन, इसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना। तो सब लोग हंस रहे थे, तो मैं रामानुजाचार्य को बताया, तो रामानुजाचार्य उनको बुलाया और पूछा, ये क्या, आप क्या कर रहे हो भगवान को छोड़कर? बोले, नहीं, इनकी आँखें बहुत सुंदर हैं इसलिए मैं देख रहा हूँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो, छली कपटी नहीं थे, हालांकि विषय थे। भौतिक इच्छा होना उतना बुरा नहीं है जितना कपटी होना। जब हम कपटी होते हैं तो भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। श्री गौर गोविंद महाराज बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु इज पतित पावन बट नॉट कपटी पावन, है ना। हमारे दोष भी हों, जो भी गलतियां गुरु के सामने, वैष्णव के सामने प्रस्तुत करने से वो दोष धीरे धीरे दूर हो जाते। तो रामानुजाचार्य उनको बोले, मैं आपको इससे सुंदर कोई चीज़ दिखाऊँ? बोले, हाँ, फिर मैं उसका भक्त बन जाऊँगा। तो उनको लेकर गए, भगवान रंगनाथ जी का विशेष दर्शन कराया और फिर वो फुल टाइम भगवान की सेवा में लग गए। लेकिन रामानुजाचार्य बोले, क्योंकि आप उसके साथ रहे हो, अब तुमको विवाह करके रहना चाहिए। तो धनुर्दास और दोनों विवाहित रहने लगे और रामानुजाचार्य धनुर्दास पर इतनी कृपा करते कि जब वो स्नान करने जाते उनके गले में हाथ रखते। और सारे जो ब्रह्मचारी शिष्य सोच रहे थे कि गुरु जी हमको ध्यान नहीं दे रहे, ये जो नए भक्त हैं जो पहले क्या करते थे हम जानते हैं इनकी लीलाएँ, अब गुरु जी ज़्यादा इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, इनके में संशय था। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, एक दिन जब सारे ब्रह्मचारी सोए हुए थे तो उनके वस्त्र थोड़े अदल बदल कर दिए या थोड़ा सा कुछ वस्त्र फाड़ के इधर उधर कर। जब सुबह उठे मंगल आरती के लिए तो भक्तों में झगड़ा होने लग गया, कह रहे मेरे धोती, मेरा कुर्ता, मेरा कौपिन, है ना। तो और उसी दिन शाम के समय रामानुजाचार्य ने धनुर्दास को अपने कमरे में बुला लिया और कुछ ब्रह्मचारियों को बोला कि आप जाओ उनके घर में, उनकी पत्नी अकेले है, वो सोए होंगे, आप धीरे धीरे जाना, उनके सारे गहनों को चुरा कर ले आना जिन्होंने अपने कान और गले में पैरों में डाल के रखे। तो ब्रह्मचारी गए बिल्कुल सहमे सहमे धीरे धीरे, और वो हेमाम्बा सोई हुई थी, उसकी एक्चुअली उसकी उसको उसको पता था वो सोए नहीं थे लेकिन आंखें बंद थी। तो लगा कि अरे मेरे मंदिर के भक्त आ रहे हैं और मेरे गहने चुराना चाहते हैं, जरूर कोई सेंटर में पैसे की कमी होगी, जरूर कोई डीटीज को कुछ जिन्होंने सेवा की जरूरत होगी। तो उन्होंने उनको लेने दिया, वो एक तरफ के ले लिए, वो पलटने गए तो उतने में ब्रह्मचार्य को लगा कि शायद उसकी नींद खुल गई, भाग गए लेकर। और फिर रामानुजाचार्य ने उनको बोला कि अब जाके देखो कि धनुर्दास का क्या रिएक्शन होता है। तो वापस गए तो देखा धनुर्दास लौटे, मेरी पत्नी बोले कि लगता है कि आज हमारे हमारे मंदिर में बहुत पैसे की कमी है। बोले क्या बात है? बोले आज हमारे कुछ गुरु भाई आए थे और वो गहने चुराने हैं। हाँ, गहने चुराने? फिर क्या वो आपने दे दिया? मैंने दिया, एक तरफ का दिया, लेकिन फिर वो डर गए, चले गए। तो अपनी पत्नी को डांटने लगे, सिर्फ एक तरफ का क्यों दिया, दोनों देने चाहिए थे, ये ना, ये तो सब कुछ गुरु की संपत्ति के लिए ही है। तब फिर ब्रह्मचारी ने सुना, तब वो जान गए कि एक्चुअली धनुर्दास ब्रह्मचारी गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचारी से ज़्यादा वैरागी थे। तो कंक्लूशन में हम समझ सकते हैं कि वैराग्य का मतलब है जो भी है भगवान की सेवा में अर्पण करना, चाहे पुंडरीक विद्यानिधि की तरह हो, करोड़पति हो, या श्रीधर कोल्लावरचा की तरह एक पुराना लोटा हो। तो आश्रम और वर्ण महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति की चेतना महत्वपूर्ण है। रामानुजाचार्य परफेक्ट, एक उनकी शिक्षाएँ हैं कि वैष्णव की सेवा करना, भगवान नारायण का नाम लेना, हमारे लिए भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और अपने उदाहरण से और शब्दों से वो हमें सिखाते कि शुद्ध भक्ति का अभ्यास कैसे करना है। रामानुजाचार्य ने कई ग्रंथों को भी लिखा। एक बार तो वो कश्मीर में गए थे, क्योंकि उनको श्री भाष्य का कमेंट्री लिखना था, तो उनको ओरिजिनल कुछ ग्रंथ चाहिए थे, और वहाँ के लाइब्रेरीज में जब वो ग्रंथ लेने के लिए गए तो पहले तो उनको परमिशन दी गई, वो किताबों को पढ़ रहे थे, लेकिन जब वो लेके जा रहे थे तब किसी ने उनको मैसेज भेजा, नहीं नहीं ये ग्रंथ आप नहीं ले सकते, ग्रंथ उनसे वापस ले लिए गए। तो रामानुजाचार्य सोचने लगे अभी ग्रंथ चले गए मैं क्या करूँगा। फिर क्या हुआ, कुरेश बोले गुरुदेव मेरे को ये ग्रंथ सारे याद हैं। बोले कैसे, बोले जब रात के समय आप विश्राम कर रहे थे तब मैं उन ग्रंथों को पढ़ रहा था, और एक बार पढ़ने के बाद मुझे पूरा याद है श्रुतिधर। आजकल तो हम लैपटॉप में स्टोर करते हैं, कौन से फाइल है वो नाम भूल जाते हैं लेकिन पहले मेमोरी इतनी थी, है ना। एक बार तो रामानुजाचार्य मेलकोटे में थे और उनको आवाज़ सुनाई पड़ी, मुझे बाहर निकालो, मुझे भूख लगी है, मुझे बाहर निकालो। तब उन्होंने खुदाई की तो उसमें से डीटीस प्रकट हुए, जिनका नाम है चलु नारायण, तिरु नारायण भी बोलते हैं उनको। बहुत सुंदर डीटीस हैं, पूरे सृष्टि के पहले डीटीस हैं। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने बोला कि मुझे डीटी वर्शिप करनी है, तो भगवान ने वो डीटीस प्रकट किए, वो चलु नारायण। फिर उनको लगा कि मेन मूर्ति तो है लेकिन उत्सव मूर्ति नहीं है, छोटी मूर्ति जो परिक्रमा के लिए ले जा सके। तब उनको पता चला ये उत्सव मूर्ति जो है राजा ने चुरा लिया, दिल्ली के राजा ने। दिल्ली बहुत महान शहर है, आप तो हस्तिनापुर के हो, आपके लिए भी दिल्ली में पांडव भी रहे हैं, दिल्ली में उनके परवर्टेड रिफ्लेक्शन औरंगजेब वगैरह भी रहे, है ना, दोनों एक्सट्रीम। तो यहाँ पर आए, आप सोचिए कितना किलोमीटर है कर्नाटक से यहाँ, है ना, यू नो 1500 किलोमीटर्स। ऐसे नहीं कि वो फ्लाइट से आया, संपर्क क्रांति से राजधानी, पैदल चलते हुए आए, और राजा से बोला कि मेरे को डीटीज चाहिए। तो डीटीज कौन से चाहिए, मेरे पास बहुत सारे हैं। कल पूरा इलाइक है ना, जैसे कोई टेररिस्ट होता उस तरह से सब ड्यूटीज को चुरा लिया। जब रामानुजाचार्य ने बताया ये ड्यूटीज, बोले अगर ये विग्रह जो है ये मेरी बेटी को बहुत प्रिय है, इसलिए अगर आपका सच्चा प्रेम है आप ड्यूटीज को बुलाओ, और ड्यूटीज अगर चलते हुए आते हैं तो मैं मानूंगा कि आपका सच्चा प्रेम है इनसे। तुमने भगवान को अपनी भाषा में बुलाया, अब भगवान चलते हुए आ गए। अभी मैं बुलाऊंगा तो शायद भगवान उल्टे भाग सकते हैं लेकिन मेरे अंदर भक्ति नहीं है। रामानुजाचार्य से हमें भक्ति मांगनी चाहिए, चाहे कोई भी संप्रदाय, भक्ति इज अ कॉमन फीचर। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो लेकर गए, जब राजकुमारी उठी तो रोने लगी, वो भी प्योर डिवोटी थे। इसका मतलब मुस्लिम परिवार में भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार से थे, कि आत्मा तो मुस्लिम और हिंदू नहीं होती, आत्मा तो सेम, शरीर का भेद। तो वो स्वयं गई रामानुजाचार्य के पीछे 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 करते सैनिकों के साथ, रामानुजाचार्य आगे निकल गए थे, कर्नाटक बाउंड्री पे पहुंचे, उसके नीचे हिंदुओं का राज्य था, तो सब सैनिक तो वापस चले गए, और ये बीबी नाचियार ये अकेले गई, और मंदिर में तो उनको अलाउड नहीं था, मंदिर में भगवान की स्थापना हुई थी। तो रामानुजाचार्य जानते थे उनकी भक्ति, उनको बड़े आदर से अंदर लेकर आए और उनको दर्शन कराया, और बाद में थोड़े समय बाद उन्होंने अपने प्राण को भगवान के ही सामने त्याग दिए। और रामानुजाचार्य उनकी भक्ति को जानते हुए उस राजकुमारी की एक मूर्ति बनाई, और आज भी मेलकोटे मंदिर में भगवान विग्रह मुख्य मूर्ति और उत्सव मूर्ति दोनों के चरणों में उस राजकुमारी की मूर्ति है, जिसका इतना गहरा प्रेम था। और अंत में समय हो गया, मैं अंत्य लीला पे आ रहा हूँ। रामानुजाचार्य अपने आखिरी दिनों में अपने शिष्यों को बोले, हमेशा भगवान नारायण का नाम लो, भगवान नारायण की सेवा करो। श्री बोलते थे ये जो ग्रंथ मैंने दिए हैं उनका जो भाष्य था श्री भाष्य, वो पढ़ो और दूसरों को सुनाओ। हमारे लिए इसका मतलब है प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो और दूसरों को सुनाओ। वो बोलते थे कि हमेशा तीर्थों में तीर्थ यात्रा में जाने का प्रयास करो, स्पेशली यादव वद्री या मेलकोटे के बारे में बताते थे, जहाँ पर कृष्ण बलराम भी गए थे। फिर अपने शिष्यों को बताने लगे कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो एक महान डिवोटी के साथ रहो, महान भक्त के साथ रहो, उसके साथ रहने से भी आपका उद्धार हो जाएगा। और उनके शिष्य बहुत रोने लगे, गुरुदेव आप जा रहे हो, तो बोले कि आप पता नहीं ये शरीर तो नाशवान है ही, तो मैं थोड़े समय और रहता हूँ। और उन्हें अपने हाथों से एक विग्रह बनवाए और उसको पास में बुला के गले लगाए डीटीस को और ऐसे उनके अंदर अपनी श्वास भरी, बोले ये जो डीटीस हैं वो मेरे से अभिन्न है। और वो डीटीस अभी कहाँ पर हैं? एक्चुअली श्रीरंगा में उनके बॉडी भी है ना, बोथ ऑफ देम अच्छा सेम है, श्रीरंगा में एक्चुअली उनका देह है और अभी भी उसमें नाखून आते हैं। ऑलमोस्ट 1000 साल, मतलब 1000 साल जन्म को हो गए तो अप्रकट हुए 880 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली, अभी भी दिव्य देह है। दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल कैन विजुलाइज। तो और एक विग्रह उनका मेलकोटे में भी है जो भी उनसे अभिन्न है। तो ये हम आज के दिन उनकी टीचिंग्स पे मेडिटेट कर सकते हैं। वो अपने शिष्यों को हमेशा बताते थे कि भगवान का नाम स्मरण करो, उनकी शिक्षाओं का पालन करो, कंपैशन दया की भावना। उनके जीवन को खतरा था फिर भी वो प्रचार कर रहे थे, कितना उनका प्रेम था। एक बार तो तिरुपति से नीचे आए कुछ महाप्रसाद लेके, और प्रसाद जब उन्होंने खोला उसमें कुछ चींटियाँ भर गई थी, तो चींटियों को साइड में करके यू नो लड्डू खा लेते तिरुपति बालाजी लड्डू या कोई भी प्रसाद रहा होगा। लेकिन वो सोचने लगे नहीं मुझे वापस जाना है, अभी वापस जाओ। किस लिए? क्योंकि वो चींटियाँ वो धाम के वासी हैं, तो तिरुपति से हम नीचे ले अपराध होगा, उनको वापस वहाँ छोड़ना चाहिए। मतलब उनका इतना ये था। एक बार तो थोड़ा डाउट चल रहा था कि भगवान वेंकटेश का जो विग्रह है ये शिवजी का विग्रह है या विष्णु का विग्रह है। रामाचार्य ने बोला कि आप ऐसा करिए कि सब जो सामग्री है शिवजी के भी जो वेपन्स जो पार्षद होते हैं वो भी रखो और शिव विष्णु के भी रखो और दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद करने के बाद सुबह मंगल आरती से पहले देखा सब विष्णु के वहाँ। तो एक बार रामाचार्य को थोड़ी कृपा चैतन्य महाप्रभु के भी दर्शन हुए, तो मायापुर में आए थे नवद्वीप में और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए उनको। तो भगवान ने बताया कि आप मेरी लीला में भी प्रकट हो गए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अनंत आचार्य के रूप। और एक बार तो भगवान उनको थप्पड़ मारा, अरे कृष्ण भगवान अपने शुद्ध भक्त को ही मार सकते हैं, नहीं हमको खाली मच्छर काटते हैं हमको भगवान के थप्पड़ पड़ते हैं ना। किसी को मालूम है कौन सी कहानी कहाँ पे थप्पड़ मारा भगवान ने? जगन्नाथपुरी में वो सोच रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड यू नो थोड़ा ठीक नहीं है, तो 3 महीने का कोर्स देना चाहिए ना, समथिंग लाइक मायापुर में होता है समथिंग लाइक दैट। और पुजारी प्रार्थना कर रहे थे भगवान रक्षा करो हम आपकी सेवा कर रहे हैं प्रेम से। जगन्नाथपुरी के पंडा ट्रांसेंडेंटल है, चाहे आपका डोनेशन भी मांगे यू नो उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो भगवान के पार्षद हैं। एक बार तो वृंदावन में ऐसे हुआ, एक डिवोटी का ब्रजवासी से झगड़ा हो गया और उस ब्रजवासी की शायद गलती थी, पता नहीं किसके पैसे के मामले में तो होता रहता है। और प्रभुपाद इतने गुस्से हुए बोले कि आप उनको सब ब्रजवासी है सारे पैसे दे दो, अगर आपको सावधान होना था तो पहले से ही आपको नेगोशिएशन करना चाहिए। और फिर पैसे देने के बाद प्रभुपाद बोले नाउ यू लीव वृंदावन, गो अवे फ्रॉम वृंदावन, क्योंकि ये धाम के वासी। ऑफकोर्स कभी कभी धाम के वासी भी गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो धाम में रह रहे हैं तो हमें उनका निंदा नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी धाम में रह के गलतियाँ करें, थोड़ा अलग चीज़ है। धाम वासी गलतियाँ करें और गलतियाँ करने के लिए धाम में वास करें, थोड़ा अंतर है। रामाचार्य सोच रहे थे ऐसे और रात को भगवान जगन्नाथ जी ने थप्पड़ मारा और वो उड़ते हुए 300 किलोमीटर दूर कुर्म क्षेत्र पहुँच गए। अच्छा है बहुत, आजकल तो एयरपोर्ट जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, यहाँ पे सुबह 8:30 बजे निकलो तो 11 बजे का फ्लाइट पकड़ना मुश्किल है। तो एयरपोर्ट पे जाओ फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक फिर वेटिंग करो फिर ट्रेन में बैठो फिर ऊपर जाएगा भाग्य होगा तो नीचे आएगा और अनाउंसमेंट होते हैं पानी में आए गिरेगा तो क्या करना है। एक बार मैं एयरपोर्ट में जब अनाउंसमेंट कर रहा था मैं तो अनाउंसमेंट सुन रहा था तो कर नहीं रहा था, टाइम बहुत कम है इसलिए बहुत फास्ट बोल रहा हूँ मैं बहुत सब लीलाओं को एकदम 1 मिनट में बता रहा हूँ। तो एमरजेंसी सीट पर बैठा था ना, एमरजेंसी एग्जिट पर बैठो तो एयर होस्टेस आके पास में लगा मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बोल रहे थे, बोले स्वामी जी ऐसा होता है ऐसे करना और अग्नि में गिरे तो ऐसा करना। बोले अग्नि में गिरा अग्नि लगी या पानी में गिरा तो ये करना चाहिए, बीट बैग दिखाया मैंने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। वैसे भी अगर प्लेन में आग लग गई तो आप कर भी क्या सकते, पानी में गिरे तो भी इंडियन ओशन में कितना तैर हो गया, वो फुलाओगे ये नहीं क्या 5 मिनट बाद मृत्यु होगी, इतना ही फर्क है, ये ना यमदूत को और टाइम मिल जाएगा आने के लिए. तो रामानुजाचार्य कंक्लूजन में, आई एम सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाता हूँ, व्हाट वाज आई सेइंग, हां दैट उनको थप्पड़ मारा उनको, और जब वो उठे तो उनको आश्चर्य लगा कि ना पंजाबी बाग में सोए और एक शिव मंदिर में पहुंच गए और पता भी नहीं कहा. तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक शिवलिंग दिखाई पड़ रहा था. एक्चुअली वो क्या था, किसका मंदिर था, कूर्म भगवान का. फिर उनको लगा कि मैं कहाँ पहुँच गया, मैं प्रसाद नहीं खा सकता, शिव मंदिर में वैष्णव प्रसाद नहीं लेते. फिर किसी ने बताया विष्णु का ही मंदिर है, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया. असंख्य लीलाएँ उनके रामानुजाचार्य के, आप सब दिन में आपको समय मिलेगा, आप पढ़िए, प्रभुपाद जी के प्रवचन में भी है. निमिशरण्य दास प्रभु करके एक डिवोटी है प्रभुपाद डिसाइपल, उन्होंने किताब भी लिखा है, इंटरनेट पर भी बहुत सारे मटीरियल्स हैं. इतने सारे मंदिरों की स्थापना की उन्होंने, और कई सारे उनके हजारों सन्यासी शिष्य थे, और आज भी उनके संप्रदाय में जीयर स्वामी जो उनके लीडर्स होते हैं. साउथ इंडिया में जहाँ मैं जाता हूँ हैदराबाद में, तो एयरपोर्ट के पास उन्होंने एक बहुत सुंदर आश्रम खोला, कई एकर्स ज़मीन, फ्री प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन 3 times a day, फुल द्रोण प्रसाद नहीं फुल प्रसाद, हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्कूल, गौशाला. बेसिक संस्कार वही है, गौशाला गाय तो वही है, प्रसाद भी वही है, मंत्र भी ओम नमो नारायण है, हरे कृष्ण. ऑफ़ कोर्स कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र इज मोर पावरफुल, बट उनके लिए ओम नमो नारायण इज ऑल्सो इक्वली पावरफुल. आज के दिन हम रामानुजाचार्य के चरणों में भीख मांगते हैं, वैष्णव ठाकुर हमें दया करो कि हम भी श्री प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन के अनुसार शुद्ध जीवन बिताएं. स्पेशली दो चीज़ें, वैष्णव की सेवा करना और सतत कॉन्स्टेंटली बिना अपराध के सच्चे दिल से भगवान के नाम को पुकारना. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, प्रभुपाद की जय. थैंक यू. राम कथा नहीं बोल सका, लेकिन मे बी मंडे अगर इफ इट इज पॉसिबल आई कैन स्पीक, क्योंकि कदम बिहार प्रभु ने मुझे सजेस्ट किया था कि राम लीलाएं गौर लीला, मैं गौर लीला ज़्यादा बोलता हूँ, तो बोला चैतन्य चरितामृत में जो राम लीला का वर्णन आता है, यानी चैतन्य महाप्रभु कैसे राम मंदिरों में जाते हैं, कैसे वो राम नाम की महिमा बताते हैं,